पूर्व मध्य युग की विविध साधनाएं। षष्ठ दशम शतक के काल में यज्ञ या के स्थान पर देव मंदिरों की प्रधानता लक्षित होती है। पूर्ववर्ती के आर्य ग्रंथों को आकर रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती पर दिखाई पड़ती है। वेद प्रामाण्य का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और विरोधी संप्रदायों को अवैदिक कहकर उड़ा देने की चेष्टा चरम सीमा तक पहुंच जाती है। दर्शन के क्षेत्र में भाष्यों और टीकाओं के सहारे और धर्म के क्षेत्र में पुराण, उपपुराण और स्त्रोतों के सहारे आकर ग्रंथों के सिद्धांत के प्रचार की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर से लेकर बौद्ध और जैन संप्रदायों तक में मंत्र, यंत्र, मुद्रा आदि का प्रचार बढ़ता दिखाई देता है। प्रायः सभी संप्रदायों में उपास्य देवों की शक्तियों की कल्पना की गई है और यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती पर दिखाई देती है। यह काल भारतीय मनीषा की जागरूकता, कर्मण्यता और प्रतिभागत उत्कर्ष का काल है। विशेष रूप से लक्ष्य करने की बात यह है कि इस काल में भारतीय धर्म प्रचारकों का दूर दूर देशों से घनिष्ठ संबंध बढ़ता ही गया। बौद्ध धर्म के प्रचारकों का चीन से जो संबंध इस काल से पूर्व ही स्थापित हो चुका था, वह और भी दृढ़ होता गया और इस काल के चीन के दो अत्यंत उत्साह परायण विद्या व्यसनी महापुरुष युत्सांग और इत्सिंग यात्री रूप में इस देश में आए। ये लोग, विशेषता युत्सांग, इस देश के बहुत बड़ी ग्रंथ राशि अपने साथ चीन ले गए, जिनमें से अधिकांश की चीनी भाषा में अनुवाद सुरक्षित है, यद्यपि वे मूल रूप में खो गए हैं। युत्सांग के जीवन वृत्त से पता लगता है कि अपने साथ महायान सूत्र के 224 ग्रंथ, अभिधर्म के 192 ग्रंथ, स्थावीर संप्रदाय के सूत्र विनय और अभिधर्म जातीय ग्रंथ 14 ग्रंथ, महासंधिक संप्रदाय के इसी श्रेणी के 15 ग्रंथ, महिशास्त्रक संप्रदाय के तीनों श्रेणियों के 22 ग्रंथ, काश्यपीय धर्मगुप्त और सर्वास्तिवाद संप्रदाय के भी इसी प्रकार के क्रमशः 17, 42 और 67 ग्रंथ साथ ले गए थे। इस ग्रंथ राशि का उद्धार अभी नहीं हुआ है। विक्रम की छठी सती के मध्य या उत्तर भाग में बौद्ध धर्म जापान पहुंचा और सातवीं आठवीं सती में अन्यान्य देशों तिब्बत, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, श्याम और बाली आदि में बौद्ध, शैव और वैष्णव धर्मों का प्रयास हुआ। इस प्रकार हमारे आलोच्य काल के पूर्वार्ध में समूचे पूर्वी देशों में भारतीय धर्म पहुंच चुका था। स्वयं भारत ने भी इसी काल में एक आर्य धर्म की प्रश्रय दिया। मुसलमान नेताओं के भय से भागे हुए जरथुस्त्र धर्म वालों ने आलोच्य काल के पूर्वार्ध के अंतिम वर्षों में इस देश में आश्रय पाया था। यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि वह काल जागरण, चिंतन, कर्मण्यता और मानसिक औदार्य का है, परंतु उसके बाद के काल में शिथिलता अधिक लक्षित होती है। इस काल में भारत का विदेशों से संबंध उत्तरोत्तर शिथिल होता जाता है। इस्लाम जैसे नए शक्तिशाली और संगठित धर्म संप्रदाय से संपर्क होता है। टीकाओं और निबंधों पर आश्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। शास्त्रीय मतवादों को लोक धर्म के सामने झुकना पड़ता है और अंत में लोक धर्म प्रबल भाव से शास्त्र मत को अभिभूत कर लेते हैं। आलोच्य काल में कुमारिल और प्रभाकर जैसे विख्यात मीमांसकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने कर्म मीमांसा को नवीन शक्ति के रूप में ऊर्जस्वित किया। भुवन विश्रुत आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अद्वैतवाद ने प्रायः सभी वैदिक संप्रदायों को प्रभावित किया। सर्वतंत्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्र का उद्भव भी लगभग इसी काल में हुआ। संभवतः न्याय दर्शन पर लिखा हुआ वात्स्यायन भाष्य इसी काल के आरंभ में लिखा गया और न्याय वात्तिक के प्रसिद्ध आचार्य उद्योतकर का जन्म तो निश्चित रूप से इसी काल में हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध माध्यमिक आचार्य चंद्र कित्ती ने इसी काल में मध्यम कावतार और प्रसन्न पदा नागार्जुन की कारिका पर टीका लिखी। इनका समय विक्रम की सातवीं शती का उत्तरार्ध है। शांति देव, जिनका बोधि चर्यावतार त्याग और आत्म बलिदान का अपूर्व ग्रंथ है, इसी काल में हुए थे। विज्ञानवादियों के आचार्य चंद्र गोमिन भी इसी समय हुए और सामंत भद्र और अकलंक जैसे जैन मनीषी भी इसी काल में प्रादुर्भूत हुए। काव्य नाटक कथा आख्यायिका अलंकार आदि के क्षेत्रों में इस काल में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुए वे पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। इस युग के धर्म विश्वास के मनन के लिए सबसे उपयोगी ग्रंथ पुराण आगम तंत्र और संहिताएं हैं। परंतु पुराणों के बारे में यह कहना कठिन है कि कौन सा पुराण या उसका अर्थ विशेष कब रचा गया। भारतीय साहित्य में पुराण कोई नई चीज नहीं है। धर्म सूत्रों में और महाभारत में पुराणों की चर्चा आती है। आप स्तंभीय धर्म सूत्र में तो पुराणों के वचन भी उद्धृत हैं। मनोरंजक बात यह है कि प्रायः सभी मुख्य पुराणों में अष्टादश पुराणों की सूची दी हुई है, अर्थात प्रत्येक पुराण यह स्वीकार करता है कि उसकी रचना के पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इतना तो निश्चित है कि हमारे आलोच्य काल के पूर्वार्ध के समाप्त होते होते प्रायः सभी पुराण लगभग उसी स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे, उसमें वे उपलब्ध हैं। उनमें प्रक्षेप परिवर्धन बाद में भी होता रहा है, परंतु परवर्ती काल में सांप्रदायिक प्रवृत्ति की स्थिति इतनी स्पष्ट कि इन प्रक्षिप्त परिवर्धित अंशों को खोज निकालना बहुत कठिन नहीं है। उदाहरणार्थ, भागवत पुराण को सर्वश्रेष्ठ पुराण के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बाद में आई है, और पद्म पुराण अंतर्गत पाताल खंड का जो नरसिंह उपपुराण है उसमें यह प्रवृत्ति है, इसलिए हम उसे परवर्ती समझ सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी ऐसी ही प्रवृत्ति है, इसलिए इन्हें भी हम परवर्ती कह सकते हैं। शिव पुराण की वायवीय संहिता और देवी भागवत में उत्तरकालिक संप्रदायों की बातें होने से उनका काल भी बात का ही होगा। जो हो, हम इतना मान ले सकते हैं कि मुख्य पुराणों की रचना इस काल में बहुत कुछ समाप्त हो चुकी थी। इन 18 पुराणों के नाना भांति से विभाग किए गए हैं। बताया गया है कि इनमें से 6 तामस प्रकृति के लिए, 6 राजस प्रकृति के लिए और 6 सात्विक प्रकृति के लिए हैं। वैष्णव पुराणों को सात्विक कहा जाता है, इसलिए यह अनुमान संगत ही है कि विभेद परवर्ती वैष्णव कल्पना है। हमारे आलोच्य काल के प्रारंभ में ही पंच देवों विष्णु शिव दुर्गा सूर्य और गणपति की उपासना चल पड़ी थी। अनुश्रुति शंकराचार्य को इस उपासना का आदि प्रचारक मानती है। पंचदेवों में ब्रह्मा का नाम न आने से कुछ पंडित अनुमान करते हैं कि यह निश्चय ही उस समय की कल्पना होगी जिस समय ब्रह्मा की पूजा उठ चुकी रही होगी। विक्रम की 7वीं शती के आसपास इस प्रकार की कल्पना की गुंजाइश है। इस अनुमान के साथ अनुश्रुति का कोई विरोध नहीं देख पड़ता, इसलिए यह कहना असंगत नहीं है कि शंकराचार्य के समय भी यह उपासना प्रचलित हुई। स्मात लोग पंच देव उपासक हैं, वे शंकर को मानते थी, यद्यपि उनका विरोध किसी से नहीं, तथापि व्यवहार में स्मात और वैष्णव विरोधी जैसे ही लगते हैं। अनेक पुराण पंचदेवों की उपासना पर जोर देते हैं। पंडितों का अनुमान है कि गरुण पुराण स्मार्तों का पुराण है और अग्नि पुराण स्मात ग्रंथ ही है, यद्यपि उसमें वैष्णव उपादान अधिक है। इन दोनों पुराणों में आगमों और तेजों का प्रभाव है। कहा गया है कि नारद वाराह वामन और ब्रह्म वैवर्त पुराणों में वैष्णव भाव है और शिवलिंग कुर्म इनमें शैव भाव। पंडित का यह अनुमान है कि पुराणों के अंतराक्षय के अनुसार संगत नहीं जान पड़ता। स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार 18 पुराणों में 10 शैव 4 ब्रह्म 2 शाक्त और 2 वैष्णव है। इसे पुराण में शिव रहस्य खंड के अंतर्गत संभव कांड में उनके और ही तरह के नाम बताए गए हैं। शिव भविष्य मार्कंडेय लिंग वाराह स्कंद मत्स्य कुर्म वामन और ब्रह्मांड, ये 10 शैव पुराण हैं। विष्णु भागवत नारदीय और गरुण, ये 4 वैष्णव पुराण हैं। ब्रह्म और पद्म, ये 2 ब्राह्मण पुराण हैं। अग्नि पुराण अग्नि की ओर और ब्रह्म वैवर्त पुराण सूर्य की महिमा गाते हैं।